हिंदी आनर्स में 10वां प्रश्न पत्र छायावादी प्रश्न पत्र है, जो कि स्पेशल प्रश्न पत्र है, जिसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा छायावादी कवियों को पढ़ना है। सर्वप्रथम हम जयशंकर प्रसाद पर आलोचनात्मक प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। जयशंकर प्रसाद, प्रश्न। भाव पक्ष और कला पक्ष को दृष्टि में रखते हुए प्रसाद जी के काव्य की विशेषताओं की सम्यक विवेचना कीजिए, अथवा प्रसाद जी की काव्य साधना और काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर। प्रसाद जी छायावाद काव्य के जनक और पोषक होने के साथ ही आधुनिक काव्यधारा का गौरवमय प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रसाद जी ने जहाँ रीतिकाल की अफीमची श्रृंगारिता से कविता कामनी को निकाला, वहाँ उन्होंने द्विवेदी युग के इतिवृत्तात्मकता और निरसता के शुष्क रेगिस्तान में उसके सूखते हुए कंठ को मधुर रसधारा प्रदान की। प्रसाद जी की कोमल कल्पना ने प्रेम के स्वरूप को उपस्थित करते हुए मधुर और कोमल भावनाओं से कविता कामनी का श्रृंगार किया। उनके काव्य की भावगत विशेषताओं का उद्घाटन निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है। प्रेम और सौंदर्य के कवि। प्रसाद जी सौंदर्य और प्रेम के कुशल चितेरे कवि हैं। प्रसाद जी प्रेम की अभिव्यक्ति लौकिक पृष्ठभूमि से प्रारंभ करते हैं, वह क्रमशः उठता हुआ अलौकिकता की सीमा तक पहुंच जाता है। उनका आंसू काव्य विरह काव्य है। उनका लौकिक प्रेम अलौकिकता का रूप धारण करके विश्व मंगल की कामना करने लगता है। उनको समस्त विश्व वेदना से व्यथित दिखाई देने लगता है। उनकी करुणा अपने तक ही सीमित न रहकर समस्त विश्व के लिए परस पड़ती है। निर्मल जगत को तेरा मंगलमय मिले उजाला, इस जलते हुए हृदय की कल्याणी शीतल ज्वाला। सौंदर्य वर्णन में प्रसाद जी की भौतिक जगत पर ही रहें, परंतु उनका सौंदर्य वर्णन रीतिकाल के कवियों की तरह कहीं भी आंतरिकता के भार से बोझिल नहीं होने पाया है। उसका प्रभाव पाठक के हृदय को मधुरता प्रदान करता है। वे सौंदर्य के सभी उपकरण स्थापित कर देते हैं। सौंदर्य के पृष्ठभूमि में चांदनी का चित्र देखिए। बिछल रही है चांदनी छवि मतवाली रात, कहती कंपित अधर में बहलाने की बात। प्रसाद जी आंसू में प्रियतम के सौंदर्य चित्र उतारते हुए नहीं थकते। उनका सौंदर्य वर्णन करने के लिए वे एक से एक सुंदर उपमान खोज लाते हैं। निम्न छंदों में देखिए। काली आंखों में कितने यौवन के मद की लाली, मानिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। प्रसाद जी प्रेम और सौंदर्य के सभी उपकरण उपस्थित कर देते हैं। उनके नेत्रों की भूख मिटती है और शांत हृदय को शांति मिलती है, परंतु उसमें अश्लीलत्व दोष कहीं भी नहीं आने पाता। प्रसाद जी के प्रेम वर्णन में शीतलता है। वह भाव आतप से तापित मनुष्यों को विश्राम और शीतल छाया देने वाला है। घरे प्रेम तरु तले बैठ छां लो भव अताप से तापित और जले। प्रसाद जी के प्रेम विरह में करुणा पर्याप्त मात्रा में है। उनका आंसू काव्य इसका सफल उदाहरण है। उनका एक एक छंद करुण अनुभूति से परिपूर्ण है। कुछ उदाहरण में देखिए। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। प्रसाद जी के इस करुण विवरण में आशावाद है। वे विश्वास के साथ कहते हैं कि उनका प्रियतम अवश्य ही उनके पास आएगा। इस शिथिल आह से खींचकर तुम आओगे आओगे, इस बड़ी व्यथा को मेरी रो रो कर अपनाओगे। प्रेम में कितना दृढ़ विश्वास है कि विरही दावा करती है कि उसका प्रेमी आएगा और अवश्य ही आएगा। उसको भी उसके साथ आंसू गिराने पड़ेंगे, उसे कष्टों की परवाह किए बिना ही आना पड़ेगा। प्रसाद जी ने अपने काव्य में इस प्रकार के प्रेम को अभिव्यक्त किया है कि जिसके सामने कोई भी बाधाएं नहीं ठहरती। रहस्यवाद। प्रसाद जी के काव्य में रहस्य की सफल अभिव्यक्ति हुई है। प्रकृति के माध्यम से भी उनका रहस्य उद्घाटित हुआ है। उनके रहस्य में कौतूहल के साथ अलौकिक प्राणी की प्राप्ति की ओर संकेत है, और कहीं वे उस अलौकिक प्रियतम को लुके छुपे यही कहीं देखते जान पड़ते हैं। उनकी जिज्ञासा के कुछ उदाहरण देखिए। हे अनंत रमणीय कौन तुम हो, यह मैं कैसे कह सकता। सिर नीचा कर किसकी सत्ता, सब करते स्वीकार यहाँ। सदा मौन हो प्रवचन करते, जिसका वह अस्तित्व कहाँ। रसमय सत्ता उनके साथ आँख में चौनी खेलती है, तो कभी आह्वान करता है। इन अलकों के अंधकार में तुम कैसे छिप जाओगे, इतना सहज कुतूहल ठहरो यह न कभी कर पाओगे। प्रकृति चित्रण। प्रकृति की प्रेरणा से ही प्रसाद में कविता उत्पन्न हुई। उनके काव्य में प्रकृति के विविध रूपों का चित्रण है। मानवीय भावनाओं का आकर्षक पूर्ण आरोप प्रकृति पर किया गया है। कामायनी का काम सर्ग प्रकृति को इसी रूप में उपस्थित करता है। वह मानवीय भावों को उत्तेजित करने में सहायक है। प्रकृति की रमणीयता में उषा नागरी का भावपूर्ण चित्र कितना सजीव और सुंदर बन पड़ा है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। किसलय का खग खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लोयह लतिका भी भर लाई, मधुर मुकुल नवल रसगागरी। कवि प्रकृति चित्रण में अनंत सत्ता की झांकी पर भावुकतापूर्ण चित्र उपस्थित करता है। उसको वह अलौकिक प्रियतम छाया के पर्दे में सम्मोहन बेड़ बजाता हुआ दिखाई देता है। छाया नट छवि के पर्दे में सम्मोहन बेड़ बजाता, संध्या कुहकुनी अंचल में कौतुक अपना कर जाता। संध्या की बेला और उस पर तुषार धवलित शैल श्रेणियों का सौंदर्य कितना रंगीन वातावरण उपस्थित करता है। संध्या घनमाला के सुंदर ओढ़े रंग बिरंगे छीट, गगन चुंबनी शैल श्रेणियां पहने हुए तुषार किरीट। देश प्रेम। प्रसाद जी के काव्य में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना की खूब प्रगति हुई है। नाटकों में तो देश प्रेम के गीत आत्मा को झंकृत कर देते हैं। देश प्रेम के गीतों में छायावादी शैली होने से मधुर कोमल भावना उमड़ पड़ी है। चंद्रगुप्त नाटक का लोकप्रिय गीत देखिए, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। प्रसाद जी के काव्य में भावनाओं की तो अक्षय निधि है। वे प्रधानता यौवन और प्रेम के ही तो कवि हैं। कामायनी आंसू झरना और नाटकीय संयत है। कल्पित होने पर भी वे वास्तविक बन पड़े हैं। उनके काव्य का प्रारंभ श्रृंगार रस से होकर शांत या करुण रस में परिणित होता है। आंसू में करुण रस तथा नाटकों में शांत रस तथा सौंदर्यशाली चित्रों को देखकर वे श्रृंगार के उत्कृष्ट कलाकार जान पड़ते हैं। रस परिपाक की स्वाभाविक परिणति उनके काव्य में दृष्टव्य है। संक्षेप में हम प्रसाद के काव्य में श्रृंगार की प्रधानता के साथ दूसरे स्थान पर शांत और करुण रस का सुंदर और सफल प्रयोग पाते हैं। कला पक्ष। भाव पक्ष की भांति कला पक्ष को भी सरलता से समझने के लिए उसे विभाजित करना उचित होगा। पहला अलंकार, दूसरा छायावाद शैली की अप्रस्तुत योजना, तीसरा अलंकार योजना, चौथा लाक्षणिक भाषा। प्रसाद जी का कला पक्ष भी उत्कृष्ट है। उनका भाषा पर पूर्ण अधिकार है। वर्णों में सजीवता परिलक्षित होती है। प्रसाद जी से मानव का पौरुषमय चित्र कितना सजीव और सुंदर बन पड़ा है, जिसकी तुलना में कहीं अन्य ऐसा वर्णन मिलना असंभव है। कल्पना। वे अपनी उपमाओं और उत्प्रेक्षा में कल्पना की ऊंची उड़ान भरते दृष्टिगत होते हैं। निम्न पंक्तियों में कैसा शारीरिक सौंदर्य का निखार है। चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। प्रियतम का इतना मुक्तधारी स्वस्थ चित्रण अन्य कवि विस्तृत रूप में नहीं कर पाए। इस उदाहरण में कला कुशल कवि ने प्रियतम के तन की चंद्रिका में गोता लगवाकर चापल्य मिटाने की कल्पना की है। तत्पश्चात वह सौंदर्य की पवित्रता को पावन शब्द से घोषित करता है और अंतिम रूप में आलोक मधुर के द्वारा छायावाद की शैली से पूर्ण रूप से प्रभावित अप्रस्तुत योजना प्रसाद के काव्य में दृष्टव्य है। नवीन उपमानों के तो वे सिद्धहस्त कलाकार हैं। वे मूर्त के लिए अमूर्त और मूर्त दोनों उपमान ले आते हैं। इसी तरह अमूर्त के लिए मूर्त भी तथा अमूर्त भी। एक दो उदाहरण देखिए। बिखरे अलके जो तर्क जाल, मूर्त के लिए अमूर्त उपमान। नव हो जगी अनादि वासना, मधुर प्रकृति भूख समान, अमूर्त के लिए उपमान। पहले उदाहरण में सजल कालिमा का विशेषण नहीं है, वरन रजनी या जग का है, परंतु वह कालिमा के साथ है। इसी तरह दूसरे उदाहरण में अल्हड़ खेल का विशेषण नहीं, वरन बचपन का विशेषण है। मानवीकरण का प्रयोग तो छायावाद की विशेषता है। प्रसाद के मानवीकरण कुछ सजीव चित्र देखिए। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। परंपरागत अलंकारों का प्रयोग करने पर भी प्रसाद जी ने उन्हें नवीनता प्रदान की है, जैसे कानों की उपमा। कमल के पत्तों से परंपरा वश दी जाती थी, परंतु उन्हें उस उपमान द्वारा प्रेमी की करुण कथा कानों पर न ठहरने का काव्यमय कारण भी प्रस्तुत कर दिया है। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले से पुरैन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख तिनके। प्रसाद जी ने असंगत विभावना, विरोधाभास आदि अलंकारों को लेकर चमत्कार उत्पन्न किया है, जैसे हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मर कर जिसको वीर। इसमें विरोधाभास है। पीली मधुमदरा किसने थी बंद हमारी पलकें, असंगति। लाक्षणिक भाषा, प्रसाद जी के भाषा में लाक्षणिकता है। उन्होंने इसके सहारे किसी वस्तु का सजीव चित्र सफलता से चित्रित कर दिया है। छायावादी शैली की विशेषता है कि जिसमें लाक्षणिकता बहुत बढ़ गई है। लाक्षणिकता प्रयोग के उदाहरण है, छल में विलीन बल, छाती लड़ती हो भरी आग। किसी किसी स्थान पर तो उन्होंने लाक्षणिक अर्थ और मुख्यार्थ को मिलाकर चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। बना विषम ध्वंत, सिर चढ़ी रही पाया न हृदय। निष्कर्ष, उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि प्रसाद जी का काव्य अनुभूति प्रधान है। अभिव्यक्ति का निखार कला पक्ष में बन पड़ा है। प्रसाद जी के काव्य में प्रकृति विस्तृत रूपों में प्रकट हुई है। कामायनी में तो प्रकृति के रौद्र और सौम्य दोनों रूप ही प्रयोग किए गए हैं। वे प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। उनका लौकिक प्रेम विकसित होकर अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति करता है। प्रकृति की छाया का भी उन्हें आभास होता है। भाषा में एक रस्ता है, लाक्षणिकता और चित्रोपमा है, अभिव्यक्ति को रमणीयता प्रदान करती है। संक्षेप में प्रसाद जी का काव्य कला की सच्ची अभिव्यक्ति है। उसमें भाव पक्ष और कला पक्ष का मणिकांचन संयोग हुआ है। आपकी सोने में सुहाग मिलाकर दर्शनीय और प्रशंसनीय काव्य साधना मूर्त हो गई है। प्रसाद जी पर अगला प्रश्न इस तरह से है, प्रसाद जी के काव्य में प्रकृति चित्रण की विशेषताओं पर अपने विचार दीजिए। प्रसाद जी के काव्य में प्रकृति वर्णन के सौम्य और रौद्र दोनों ही रूप प्रतिष्ठित हुए हैं। कहीं प्राकृतिक चित्रण में अनंत सत्ता की ओर संकेत है, तो कहीं स्थानों पर प्रकृति मानवीय भावों की पृष्ठभूमि का सृजन करती सी दृष्टव्य है। प्रकृति, प्रसाद जी के काव्य में प्रकृति चित्रण विविध रूपों में उपस्थित हुआ है। शुद्ध रूप में प्रकृति वर्णन, कोमल तथा रौद्र रूप में, रहस्यात्मक रूप में, अलंकृत रूप में और प्रस्तुति योजना के रूप में। आशा सर्ग का शरद ऋतु में प्रकृति का यह रूप देखिए। अचल हिमालय का शोभनतम, लता कलित सुचिशान शरीर। ऐसे वर्णन बहुत कम है। ऐसे रूप में प्रकृति यथा रूप में प्रस्तुत की जाती है। जब प्रसाद जी शांतमय होकर प्रकृति का अविराम रूप अंकित करते हैं, तो दृश्य में कितनी रमणीयता झलक उठती है। नव कोयल आलोक बिखरता, हिम संसरित पर भर अनुराग, शीत सरोज पर क्रीड़ा करता, जैसे मधुमय पीक पराग। महाकाव्य कामायनी का प्रारंभ भी प्रलय से हुआ है। वहां प्रसाद जी ने प्रकृति का प्रलयकारी चित्र उपस्थित किया है। देवता या वासना में उत्तेजित हुए तो प्रकृति ने रौद्र रूप में तांडव नृत्य प्रारंभ किया। प्रसाद जी की प्रकृति आनंद में परिपूर्ण है। वे प्रकृति के रोम रोम में विराट रहस्यात्मक सत्ता की विशेष अनुभूति अव्यक्त करते हैं। महानील उस परम व्योम में अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान ग्रह नक्षत्र और विद्युत कण किसका करने है संधान। अलंकृत रूप में इस रूप में प्रकृति वर्णन का बड़ा आकर्षक बन पड़ा है। वे वस्तुओं की संश्लिष्ट योजना से बिंबों का आधार लेते जान पड़ते हैं। निम्न उदाहरण में अलंकृत रूप में प्रकृति मनोरम सौंदर्य उपस्थित कर रही है। प्रसाद जी के अप्रस्तुत को अत्यंत अनुभूति से अभिव्यक्त करते हैं। कामायनी में श्रद्धा के मुख्य सौंदर्य को अप्रस्तुत रूप से वर्णन करते हुए प्रकृति कितनी सजीव हो उठी है। आह, वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई पड़ता हो छविधाम। और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। इसके अतिरिक्त प्रसाद जी ने प्रकृति का मानवीकरण करके उसे सप्राण बना दिया है। वे नाम परिणात्मक शैली में चित्रण नहीं करते। प्रारंभ में प्रकृति का गतिविधान पर ही उनकी दृष्टि रही, परंतु परिवर्ती काव्य शुद्ध रहस्यात्मक चित्र में उपस्थित हुआ। कामायनी महाकाव्य में जब जल प्लावन हो रहा है, समुद्र के बीच में जो भूमि निकलती है, कभी कल्पना से उसे नववधु के रूप में चित्रित किया है। सिंध सेज पर धरा वधु तब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की स्मृति हलदल में मान की ऐसी ऐठी सी। निम्न प्रसंग में उषा को साक्षात्कार नारी के रूप में कवि देखता है। वह पनिहारिन की आकाश रूपी पनघट में तारक घटों को डुबो रही है। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। प्रसाद जी के महाकाव्य का कथानक ही प्रकृति के पृष्ठभूमि में पल्वित है। प्रसाद जी की प्रकृति चित्रण की अनुभूति में कितनी तीव्रता है। मधुबरसाती विद्युत किरण है कापती सुकुमार। उनकी प्रकृति में उद्दीपन का आरोप भी प्रस्तुत है। मानव स्वभाव से ही अपनी भावनाओं का आरोप दूसरों पर करता देखा गया है। इसी प्रकार कवि प्रसाद अपने हृदय का स्पंदन प्रकृति में पाकर झंकृत हो उठा है। अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रसाद जी प्रकृति वर्णन के महान कलाकार हैं। उनके काव्य में जातिगत और काव्यगत सभी विशेषताएं हैं। उनकी प्रकृति काव्य में सुंदर रंगस्थली बन उठी है। प्रसाद जी के काव्य में राष्ट्रीय भावनाओं को स्पष्ट कीजिए। प्रसाद जी यद्यपि सौंदर्य प्रेम तथा प्रकृति के चित्रकार हैं, तथापि युग की प्रवृत्तियों से भी वे अछूते नहीं हैं। उनके काव्य में पराधीनता के प्रति आवेश एवं स्वाधीनता के लिए ललक पाई जाती है। उनकी राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति काव्य की अपेक्षा नाटकों में अधिक स्पष्टता से हुई है। अतीत का चित्रण करते समय कवि ने राष्ट्रीय उद्गारों को व्यक्त करने का अवकाश निकाल ही लिया। चंद्रगुप्त नाटक में कर्नेलिया का अरुण यह मधुमय देश हमारा, तथा स्कंदगुप्त में प्रथम जिसे किरणों का दे उपहार वाला गीत भारत के प्रति उनकी असीम भक्ति प्रदर्शित करता है। उन्होंने चंद्रगुप्त में उल्का द्वारा प्रयाण गीत गवाकर स्वतंत्रता की बलिवेदी पर सहर्ष बलिदान होने वाले वीरों का आह्वान किया है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रफुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंत हैं बढ़े चलो बढ़े चलो। अपने काव्य ग्रंथों में भी उन्होंने यत्र तत्र राष्ट्रीय भावनाओं को व्यक्त किया है। लहर में संग्रहित अतीत के घटनाओं पर दी हुई कविताएं करुणा ही सहस्त्रधार वैशाली की प्रतिध्वनि प्रलय की छाया आदि में भारतीय गौरव और गरिमा के प्रति उनका प्रेम प्रदर्शित होता है। अपने महाकाव्य कामायनी में भी उनके राष्ट्रीय भावों की छाप स्पष्ट लक्षित होती है। कामायनी में श्रद्धा मनुष्य पशुवध का विरोध करती है। इस भावना में गांधीवाद की अहिंसा सजग हो उठी है। इसी प्रकार कामायनी द्वारा कवि ने सूत कतवाकर गांधीवाद का समर्थन किया है। तुम दूर चले जाते हो जब तब लेकर तकली यहाँ बैठ, मैं उसे फिराती रहती हूँ अपनी निर्जनता बीच बैठ। मैं बैठी गाती हूँ तकली के प्रतिवर्तन में स्वर विभोर। चल रही तकली धीरे धीरे प्रिय गए खेलने को अहेर। महात्मा गांधी यंत्रवाद के विरोधी थे और कुटीर उद्योगों के प्रति उनके हृदय में निष्ठा थी। प्रसाद ने उनकी इस भावना को भी अपने काव्य में साकार रूप दिया है। कमाने के संघर्ष सर्ग में वे यंत्र शक्ति के अभिशाप का चित्रण करते हुए कहते हैं कि प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी, शोषण कर जीवनी बना दी जर्जर झीनी। प्रसाद जी की राष्ट्रीयता न तो संकुचित थी और न ही उनका अतीत प्रेम या पुरातनता के प्रति आग्रह था, अपितु वे नवयुवकों के लिए नूतनता के पक्षपाती थे। उन्होंने जिस प्रकार से हिंदी काव्य को नवीन भावना, नवीन विचार, नवीन भाषा, नवीन छंद और नवीन शैली प्रदान की, उसी प्रकार वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीनता देखना चाहते थे। तभी तो उन्होंने कहा है, पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद किए है परिवर्तन में टेक। प्रसाद जी के ऊपर अगला प्रश्न इस प्रकार से है, प्रसाद जी के काव्य में भाव व्यंजना एवं मार्मिक अनुभूति पर विचार कीजिए। उत्तर, भावुक कवि प्रसाद जी एक भावुक कवि थे। उनकी भावधारा का धीरे धीरे विकास होता है। वह कानन कुसुम में कामायनी तक अपने विभिन्न रूप दिखाती है। कभी उसके किनारे करुणालय बनते हैं तो कभी महाराणा प्रताप उसके किनारे विचरण करते हैं और कभी कोई प्रेम पथिक उनमें निमज्जित होकर आनंद लाभ करता है। कभी लुकती छिपती वह भावधारा झरना बनकर हृदय हिमाद्री से झरती है और कभी आंसू ढहरती लहर उठाती है। कमायनी के आनंद सिंधु में लय हो जाती है। ध्यान से देखने पर उसके विचार और सौंदर्य के दो फूल दिखाई देते हैं। यौवन का उन्माद उसको गति देता है और आनंद की तृष्णा उसको उपहार की ओर ले जाती है। विराट प्रकृति उसका विधारा का विपक्ष है। मानव हृदय का अपूर्व सामंजस्य उसमें प्रसाद जी ने किया है। शारीरिक सौंदर्य और प्रेम कुछ दूर तक उनके काव्यों में एक साथ चलते हैं और फिर धीरे धीरे प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आकर्षक होने लगते हैं। उनके काव्य में यौवन के प्रति सबसे अधिक आकर्षण है। सौंदर्य अपनी रक्षा स्वयं करता है। राणा प्रताप जब सैनिकों द्वारा पकड़ी हुई रहीम खान खाना की पत्नी को ससम्मान लौटा देते हैं तो खान खाना उससे विनोद करता हुआ सच्चे स्वर में सौंदर्य के इस महत्व को प्रकट करता है। सुंदर मुख की होती है सर्वत्र ही विजय, प्रिय तुम्हारे अनुपम सौंदर्य से बसीभूत होकर वह कानन केसरी। प्रसाद जी का हृदय प्यार की गंभीरता को भी समझ रहा है। वह इसकी दूरी से परिचित है। वह जानता है कि प्यार किया नहीं जाता, इसलिए मनुश्रद्धा के निकट पहुंचकर उससे कुछ चाहते नहीं अपितु अपने हृदय का उसे दान करते हैं। चंद्र की विश्रांत राका बालिका सी कांत, विजयनी सी देखती तुम माधुरी सी शांत। आज ले लो चेतना का यह समर्पण दान, विश्वरानी सुंदर नारी जगत की मान। यह वह दिशा है जबकि भोग वासना प्रबल होने पर यौवन प्रेम सौंदर्य का रूप विकृत हो जाता है तथा वात्सल्य की उत्पत्ति होती है। गर्भवती श्रद्धा भावी शिशु के प्रति उत्कंठा का कैसा भाव प्रकट करती है। यह हिंसा कितनी प्यारी है जो भुलवाती है देह गेह। जननी बनने के साथ उसके घर में कोलाहल है, मेरा सुना गुफा द्वार, तुमको क्या ऐसी कमी रही जिसके हित जाते अन्य द्वार। भावी शिशु के प्रति उसका एक साथ वात्सल्य उमड़ पड़ता है। अब उसे प्रियतम के मिलन की विरह की तनिक भी चिंता नहीं रह जाती। वासना का तंतु एकदम टूट जाता है। सुना न रहेगा यह मेरा लघु विश्व कभी, मैं उसके लिए बिछाऊंगी फूलों के रस का मृदुल फेन। झूले पर उसे झुलाऊंगी, दुलरा कर लूंगी बदन चूम, मेरी छाती से लिपटा इस घाटी में लगा सहज घूम। वियोग पक्ष में पहुंचकर नारी की साधना की ओर वेदना से उन्मुख होती है। उस समय वियोग करुण और विषाद की साधना करता हुआ अपनी संवेदना को व्यापक कर विराट प्रकृति पुरुष तथा आत्मा परमात्मा के मिलन पथ पर पड़ता है। प्रेमी और प्रेमिका के लौकिक मिलन के अभाव होने की दशा में आत्मा परमात्मा का मिलन ही प्रेम के साधक का लक्ष्य हो जाता है। संयोग में यदि लौकिक पक्ष प्रबल है तो वियोग की इस दशा में परमार्थ प्रबल है। संयोग साधना का फल यदि वात्सल्य है तो वियोग की चरम साधना का फल है भक्ति। निष्कर्ष, उपयुक्त विवेचना से यह न समझना चाहिए कि प्रसाद का दृष्टिकोण एकांकी है। यौमिवे हृदय की विशाल भाव भूमि पर नहीं खड़े हुए हैं। केवल यौवन उनका उत्साह क्रोध आदि भावों का चित्रण भी अनूठा है। उनकी कविता में श्रृंगार वात्सल्य शांत आदि रसों के अतिरिक्त वीर रौद्र आदि रसों का भी सुंदर वर्णन हुआ है। शेर सिंह का शास्त्र समर्पण शीर्षक कविता पढ़ते पढ़ते पाठक की भुजाएं फड़कने लगती हैं तथा हृदय में उत्साह का एक ज्वार सा आ जाता है। यहीं पर प्रसाद के ऊपर आलोचनात्मक प्रश्नों के उत्तर समाप्त हुए।